कल हम सनातन गोस्वामी पाद और श्री चैतन्य महाप्रभु का चर्चा के या संवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के अलग रूपों अलग अलग प्रकार के रूपों का विभाजन को वर्णन करते हैं। वर्णन करके श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को संबंध ज्ञान प्रदान करते हुए बोलते हैं कि जयताम सुरतोर भंगुर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन। कृष्ण मदन मोहन है, किस प्रकार वो मदन को ही मोहित करते हैं। इसके लिए सबसे पहला कृष्ण के बारे में स्वयं रूप कृष्ण के वर्णन करते हुए कृष्ण का ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि ये आध्यात्मिक जगत ये भौतिक जगत ही इतना अनंत है, ये आध्यात्मिक जगत की क्या कहना, उनका विस्तार का क्या कहना। आध्यात्मिक विस्तार में अनेकों अनंत कोटि वैकुंठ लोक है, अनंत वैकुंठ लोक, एक वैकुंठ लोक का विस्तार का वर्णन करते बोलते हैं आठ को अरब से ऐसा उसके सामने आठ के सामने आप हजारों लाखों शून्य रख के जितना संख्या बनेगा वो भी वैकुंठ लोक का विस्तार हम लोग माप नहीं सकते। तो वैसे अनंत वैकुंठ लोक है, उन सारे वैकुंठ लोक की आध्यात्मिक जगत में एक कोने में मात्र। तो ये आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वो एक कमल के पुष्प के रूप में है, एक कमल का पुष्प जिसके अंदर हजारों लाखों पंखुड़ियां हो और एक एक पंखुड़िया जो है वो वैकुंठ लोक के एक एक पंखुड़ी जो है वैकुंठ लोक के ऊपर वैकुंठ लोक स्थित है। जो बीच वाला जो रोल है, जो मूल स्थान है, उधर गोलोक वृंदावन स्थित है। ये अनंत कोटि वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन धाम के एकमात्र कोने में स्थित है। तो इस प्रकार कृष्ण का ऐश्वर्य का वर्णन करते रहते हैं कि वो अनंत ऐश्वर्य है। ये भौतिक जगत का ही विस्तार हम प्राप्त नहीं कर सकते या माप नहीं सकते। तो आध्यात्मिक जगत को जो है भौतिक जगत से तीन गुना ज्यादा है। त्रिपाद जगत एक पाद विभूति, त्रिपाद विभूति एक पाद विभूति, ये भौतिक जगत को एक पाद विभूति करके वर्णन किया गया है। एक पाद मतलब एक चौथाई, और आध्यात्मिक जगत को तीन चौथाई वर्णन किया गया है। अस्तित्व में ये भौतिक जगत ही अनंत है, अनंत में एक चौथाई तीन चौथाई ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुलना के लिए बताने के लिए कि आध्यात्मिक जगत इतना बड़ा है, विस्तृत है कि भौतिक जगत का ही माप नहीं हो सकता है। तो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से भी तीन गुना ज्यादा है। तो इसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं। बाद में बताते हैं दो ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन करते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला मतलब किस प्रकार ब्रह्मा जी स्वयं भगवान का ऐश्वर्य देके विमोहित हो गए। सबसे पहला उन्होंने देखा कि भगवान जो है वो ये साधारण सा ये छोटा सा ग्वाल बाल वृंदावन में नाना प्रकार की ये लीलाएं कर रहे, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? क्या सच में यही है क्या, सारे ब्रह्मांडों का उत्पत्ति इन्हीं से होता है क्या? तो इनके अंदर थोड़ा सा शंका है। तो उन्होंने सारे ग्वाल बालों को चुरा लिया, चुरा के वो छुपा के रख दिए। तो बाद में आके देखते हैं कि सारे ग्वाल बाल बच रहे जैसे के वैसे ही है। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार कर लिया था। ये हजारों जो ग्वाल बाल है उनकी बच्चों के रूप में अपने आप को विस्तार किया था। एक साल तक वृंदावन ने इस प्रकार की लीला रचाया। तो ब्रह्मा जी ऐसा विमोहित हो गए तो तब कृष्ण ब्रह्मा जी की अवस्था को देख के उनके कृपा करके उन्होंने क्या किया, उनको दर्शन दिखाया। सारे जितने ग्वाल बाल और बच रहे थे उनका जो स्वरूप है वो चतुर्भुज रूप स्वरूप में उन्होंने दर्शन कराया। तब ब्रह्मा जी को होश आया और ब्रह्मा जी जो है भगवान को प्रार्थना करने लगे। यही नहीं कि बल्कि एक बार ऐसा हुआ, द्वारका में भगवान स्थित थे तो ब्रह्मा जी एक बार भगवान से मिलने के लिए गए। जब भगवान से मिलने के लिए गए तो क्या हुआ, तो उधर वॉचमैन को बताया भगवान ब्रह्मा जी ने, आप जाके भगवान को बताओ, कृष्ण को बताओ ब्रह्मा जी मिलने के लिए आए। तो वॉचमैन अंदर गए तो जाके कृष्ण से पूछा कि कृष्ण बोले कि ब्रह्मा जी आए हुए आपसे मिलने के लिए। तो कृष्ण ने बोला कि वो ब्रह्मा से पूछो कि कौन सा ब्रह्मा है। तो वॉचमैन आके पूछा ब्रह्मा जी से, भगवान पूछ रहे कि आपसे कौन सा ब्रह्मा आए ये बताइए। तब ब्रह्मा जी मोहित हो गए, बोले अरे ऐसा कैसे, उनको बोलो कि मैं चतुर्मुख ब्रह्म आया हूं, मेरे अलावा और कोई ब्रह्मा है क्या। तो भगवान ने उनको अंदर आने दिया, तो उनके अंदर इस प्रकार की घमंड जो है वो महसूस किया, भगवान को पता लगा। तो कृष्ण ने क्या किया, जैसे ब्रह्मा जी अंदर आए तो उन्होंने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड से सारे ब्रह्माओं को बुलाए, जैसे उनको निमंत्रण दिया, ये ब्रह्मा जी को सारे जितने ब्रह्मा है वो सब आते हुए दिखाई पड़ा, लेकिन उन ब्रह्मा जो लोग आ रहे थे उनको कोई और ब्रह्मा दिखाई नहीं पड़ता, कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा था कृष्ण का दिव्य योजना के योजना से। तो सभी लोग ब्रह्मा जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड से अलग अलग ब्रह्मा लोग अलग अलग सर वाले थे। अभी ये चतुर्मुख ब्रह्मा जो है ये सबसे छोटा ब्रह्मा, इनके लिए केवल चार मुख थे, लेकिन बाकी ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा है उनको एक दस मुख था, एक तो सौ, एक को हजार, इतने सारे मुख थे। तो ये ब्रह्मा एकदम विमोहित हो गए, तो तब बाद में समझ गए कि ये जो मैं ब्रह्मा हूँ ये सबसे छोटे ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी व्यास को कृष्ण का ईश्वरी का वर्णन करते, ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा, और द्वारका के महल का वर्णन करते हैं, और भी विस्तृत रूप में भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। ऐश्वर्य का वर्णन करने के बाद भगवान का माधुरी का वर्णन करते हैं। भगवान का माधुरी का वर्णन करते हुए भगवान अब कृष्ण के सुंदरता का वर्णन करते हैं। कृष्ण की सुंदरता इस प्रकार है कि स्वयं कृष्ण कृष्ण की अपने ही सुंदरता को देखकर आकृष्ट हो जाते हैं। कभी कभी कृष्ण द्वारका के महल में इधर उधर जाते हैं तो महल के जो खंभ है वो दीवाल है वो इतने चमकते हैं कि स्वयं कृष्ण का उनका ही चेहरा उनके अंदर दिखाई पड़ता। तो एक बार जब उनको कृष्ण का ही अपना ही चेहरा उनको जब दिखाई पड़ा तो क्या हुआ, वो तुरंत विमोहित हो गए, अरे ये कौन है इतना सुंदर सा बालक, मैं उनको आलिंगन करना चाहता। जैसे वो आगे उनको आलिंगन करने के लिए तो उनको मालूम पड़ा रहे उनका खुद का चेहरा है करके। तो इस प्रकार कृष्ण स्वयं अपनी सुंदरता को देख के आकर्षित हो जाते हैं। He becomes completely attached to his own beauty. तो श्री चैतन्य महाप्रभु और आगे वर्णन करते हुए कृष्ण की सुंदरता को बोलते हैं कि ये वृंदावन के मदन है, अप्राकृत नवीन मदन, नवीन मदन, he is ever fresh cupid। आप में ये हमेशा गोपियों का जो हमेशा आकृष्ट करते हैं, जो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि किस प्रकार आधी रात को श्री कृष्ण के बांसुरी का आवाज सुन के सारे गोपियां भागते हुए आई, भागते आगे हुए वर्णन करते हैं कि गोपियां की है, कृष्ण जैसे बोलते हैं कि आप लोग क्यों आए हो इधर, तो गोपियां बोलती है अरे आपने तो हमारा मन को हर लिया है अपनी सुंदरता और खास करके बांसुरी की जो मधुर आवाज से, तो आप हमको स्वीकार कीजिए। तो गोपियों का निवेदन उनको सामने रखा गया था। तो इस प्रकार कृष्ण का जो सुंदरता को और वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हिज बॉडी लस्टर इज द सेंटर ऑफ ऑल ब्यूटी। कृष्ण का जो शरीर का कांति जो है वो मूल केंद्र है, उनका सुंदरता का मूल केंद्र है। He is all beauty, all strength and all fame. He is like newly arrived rain root that nourishes the heart of the gopis with his past time of rain of mercy. वो एक नवा अंबुदी, नया जो बादल है, एकदम घना बादल है, उनके सुंदरता का इस प्रकार तुलना करते हैं। His body is the ocean of eternal beauty of youth and it moves in the waves of beauty. No one possesses beauty equal to him, greater than Krishna, not even Lord Narayan. स्वयं नारायण भी मोहित हो जाते हैं कृष्ण की सुंदरता को देखने के लिए। हमको वो कहानी मालूम है जिस प्रकार नारायण हमेशा कृष्ण को देखने के लिए वो क्या किया, एक ब्राह्मण के बच्चों को उन्होंने चुरा के लेके गए, तब अर्जुन को एक शपथ देना पड़ा कि जब तक वो ब्राह्मण को शपथ दिया कि वचन दिया अगर आपके बच्चों को वापस नहीं लाऊंगा तो मैं अब एक अग्नि प्रवेश करूंगा। तो अर्जुन जो है तो ब्राह्मण के और एक बच्चा हुआ तो तुरंत मर गया, तो अर्जुन को फिर इतना ढूंढने के बाद भी नहीं मिला तो अग्नि प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, तो कृष्ण आके बोले नहीं रुको एक बार ढूंढते। वो ढूंढते ढूंढते पहुंचे नारायण के पास, तो उन्होंने देखा नारायण के पास सारे जितने ब्राह्मण के बच्चे उनके पास है। तब कृष्ण ने पूछा अरे आप ऐसा क्यों किया, तो नारायण बताया कि नहीं आपका सुंदरता को देखना चाहता था इसलिए, मुझे मालूम है जब तक आप भक्तों को मैं परेशान नहीं करूंगा और उनके संरक्षण के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार है तो स्वयं मुझे दर्शन करने के देने के लिए आप आएंगे। इस प्रकार कृष्णस जेंटलनेस एंड मैग्नानिमिटी डू नॉट एग्जिस्ट इन नारायण। कृष्णस कॉन्जुगल ब्यूटी इज एटर्नली एग्जिस्टिंग इन कृष्ण अलोन। हिज ब्यूटी इज एवरलास्टिंग माइन ऑफ ब्यूटी। तो इस प्रकार कृष्ण का सुंदरता का और वर्णन करते हैं श्री सनातन गोस्वामी पाद। वो आप जरा सा नोट्स में से पढ़ लीजिए क्योंकि हमको और प्रकाशान सरस्वती और सारंग भट्टाचार्य का भी निर्देश सुनना है। तो कृष्ण का सुंदरता का वर्णन करने के बाद सनातन गोस्वामी पाद अभिधेय तत्व को भी थोड़ा सा वर्णन करते हैं। भले ही हमने बताया कि संबंध अभिधेय प्रयोजन ये तीन डिस्कशन में प्राप्त होता है, थोड़ा सा संबंध ज्ञान रूप गोस्वामी चर्चा में प्राप्त होता है, थोड़ा सा अभिधेय ज्ञान सनातन गोस्वामी वक्ष के चर्चा में प्राप्त होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को भक्ति तत्व का भी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति को कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए और भक्ति के अलग अलग प्रकार की विधियों को पालन करना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को 64 विधियों का वर्णन करते हैं भक्ति के। 64 विधियों का वर्णन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं 64 में पांच ऐसे महान साधन हैं, वो है हरिनाम साधु संग, हरिनाम भागवत पाठ और श्री विग्रह श्रद्धा सेवन और धामवास। ये पांच ऐसे महासाधन हैं जिनका महिमा मैं स्वयं वर्णन नहीं कर सकता। तो अलग अलग प्रकार की श्रेणियों को भक्तों की श्रेणियों को वर्णन करते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी और वैष्णव व्यवहार वैष्णव आचरण के जो सिद्धांत है उनके ऊपर भी श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का वर्णन करते हैं। वर्णन करके अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को दो उपदेश देते, दो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके मैंने जो आपको शिक्षा प्रदान किया है उन शिक्षाओं के ऊपर आधारित होकर एक वैष्णव एटिकेट के ऊपर आप एक ग्रंथ रचना करो। वैष्णव का एक आचरण के ऊपर, उनका जीवन शैली के ऊपर आधारित होते अपने एक ग्रंथ का रचना करो। तब श्री सनातन गोस्वामी पाद के इस बात को सुन के तुरंत उनका चरण को पकड़ लेते श्री चैतन्य महाप्रभु का। बोलते मैं तो नीच जाति का नीच संगी का हूँ, मैं कैसे रचना कर सकता हूँ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आप शुद्ध तरीके से आप कृष्ण के सेवा के रूप में इस कार्य को रचना करने के लिए संकल्प करो, कृष्ण स्वयं आपको ये प्रदान करेंगे बुद्धि जिसके द्वारा आप इस कार्य को संपन्न कर सकते हो। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को बताते हैं कि आप अभी वृंदावन जब जाओगे, हजारों लोग बंगाल से वृंदावन में आते हैं। जब आते हैं खास करके मेरे भक्त लोग, सभी लोग गरीब होते हैं, उनके पास फटे हुए कपड़े रहते हैं, उनके पास बराबर कंबल नहीं होता है और वृंदावन बहुत ठंडी का इलाका है। तो आप वृंदावन में सबका एक ऐसा व्यवस्था करो ताकि जो भी मेरे भक्त वृंदावन में आएंगे उन सबको रहने का और उधर सब प्रसाद का और हर अच्छी तरह से वो रहे के भक्ति कर सके, उनका व्यवस्था आप बना के रखो। तो ये दो उपदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिए और सनातन गोस्वामी वृंदावन की ओर निकल गए। तो उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन वाराणसी में बनारस में थे तो एक और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आया, श्री चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच संवाद। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से झारखंड जंगल होते हुए वृंदावन गए, वृंदावन से जब वापस आ रहे हैं तो ये सब घटना हो रही है। वृंदावन से वापस आए प्रयाग में रूप गोस्वामी पाद के साथ 10 दिन चर्चा हुआ, उसके बाद अभी बनारस में पहुंचे, बनारस में सनातन गोस्वामी पाद के साथ 2 महीना बनारस में रुके। अस्तित्व में बनारस में उनको रुकने का ज्यादा 8-10 दिन रुकने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने तपन मिश्र को बोला था कि मैं हर रोज आपके घर में प्रसाद ग्रहण करूंगा। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद का प्रसंग इतना लंबा चला कि उनको 2 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को संबंध ज्ञान का शिक्षा प्रदान किया। और उसी समय उधर वाराणसी में बनारस जो है उधर एक प्रमुख सन्यासी थे, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। उधर श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे उस समय भी बनारस होके हुए जा रहे थे। तो उस समय जब बनारस में रुके थे, चंद्रशेखर आचार्य के घर में रुके थे, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्त लोग आके नृत्य कर रहे थे, कुछ समय तक श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस में हरिनाम संकीर्तन किया, तो सभी लोग ये सन्यासी को देख के, चैतन्य महाप्रभु देख के सब लोग निंदा करने लगे। अरे एक ऐसा सन्यासी है, भावुक है, नाचता रहता है, ये क्या है, वेदांत वेदांत कुछ पढ़ता नहीं है। हाँ, और ये भी चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहता है। चंद्रशेखर आचार्य ब्राह्मण परिवार के नहीं थे, वो निम्न स्तर के परिवार के थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु वो तो साक्षात भगवान है, वो तो कंप्लीटली फ्री है, किसी घर में रह सकते हैं। और चंद्रशेखर आचार्य उनके प्रिय भक्त होने के नाते चंद्रशेखर आचार्य घर में श्री चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे, तो सभी लोग उनका निंदा कर रहे थे, तो इन भक्तों को वो निंदा सुनने को नहीं हो पाया। तो सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आके निवेदन रखे कि हम इन वैष्णवों का, खास करके आपके प्रति निंदा जो है, हम सह नहीं पा रहे, आप कुछ कीजिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु चुप रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि जब वापस आऊंगा तो तब उनको मैं देखभाल करूंगा। तब वापस आए, वापस आके जब वाराणसी पहुंचे, वृंदावन का यात्रा करने के बाद वापस वाराणसी जब पहुंचे, तब फिर से इसी प्रकार का निवेदन वो प्रस्तुत करने लगे। चंद्रशेखर आचार्य, तपन मिश्रा, वो सब श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग, कि आप कुछ ना कुछ करो, क्योंकि उस समय प्रकाशान सरस्वती के 8000 मायावादी सन्यासी शिष्य थे और इतना भयंकर प्रचार हो रहा था मायावाद सिद्धांत का, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को निंदा भी कर रहे थे और सभी लोग सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु भावुक है। हाँ, ये तो कल भले ही मायावाद के संप्रदाय में दीक्षा भी लिया है, लेकिन फिर भी ये भावुक जैसे नाचते रहते हैं। तो वैष्णवों का निंदा, खास करके चैतन्य महाप्रभु का निंदा ये लोग सह नहीं पाए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु निवेदन कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु हंस रहे थे, उसी समय एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण वो आए। ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण बहुत बार बार वो मनन कर रहे थे कि किस प्रकार मैं इन मायावादी सन्यासियों को उद्धार करूं, क्योंकि मायावादी सन्यासियों के झुंड में ही युक्त थे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, लेकिन उनको मालूम था हृदय में वैष्णव थे, इसलिए वो मालूम था कि मायावादी सन्यासी लोग को परिवर्तन करने के लिए केवल एकमात्र व्यक्ति कर सकते हैं, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु खास करके बनारस में वो मधुकरी नहीं करते थे, सन्यासी के जैसे मधुकरी जैसे जीवन व्यापन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो मायावादियों का संग नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए वो तपन मिश्र के घर में हर रोज भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो तब महाराष्ट्र ब्राह्मण आके श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ के उन्होंने निवेदन किया कि आप जरा आइए, कि क्योंकि कल मैं सारे सन्यासियों को निमंत्रण कर रहा हूँ और आप भी अगर आएंगे मेरे घर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अस्तित्व में महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का ये योजना ये था कि अगर मैं सारे सन्यासियों को बुलाऊंगा, उधर श्री चैतन्य महाप्रभु बुलाऊंगा, तो उधर श्री चैतन्य महाप्रभु का संपर्क होने की वजह से मायावादी सन्यासियों को उद्धार हो सकता है। तो ये योजना के द्वारा उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु निमंत्रण श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया और अगला दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपना मध्यान्ह जो क्रियाएं वो समाप्त करने के बाद वो महाराष्ट्र ब्राह्मण के घर पहुंचे। जैसे उधर पहुंचे, उधर सारे जितने भी सन्यासी सब लोग बैठे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु जाके जैसे घर को, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले पुराने जमाने के घरों में बाहर जो है एक हाथ पैर धोने की जगह होता है, उधर श्री चैतन्य महाप्रभु उधर गए और हाथ पैर धो के तुरंत उधर ही बैठ गए जहाँ सभी लोग हाथ पैर, वो तो गंदा जगह होता है। तो उधर सारे जितने वैष्णव सन्यासी मायावादी सन्यासी है, श्री चैतन्य महाप्रभु को देखे तो चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर का जो कांति है, ऐसा लग रहा था कि हजारों सूर्यों का कांति के बराबर हो। तो वो सभी लोग चकित हो गए, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का उपस्थिति का या प्रभाव की वजह से सभी लोग तुरंत अपने आप खड़े उठ पड़े और उनके जो लीडर है प्रकाशानंद सरस्वती वो तुरंत खड़े हो गए। खड़े होके श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आके बोलते कि आप इतने गंदे स्थान में क्यों बैठे हो, आप तो साक्षात नारायण के बराबर दिखाई पड़ते हो, तो आप इधर मत बैठो, आपका बैठने का योग्य स्थान नहीं है। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने अपना हाथ श्री चैतन्य महाप्रभु को पहुंचाया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उनका हाथ पकड़े और प्रकाशानंद सरस्वती श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने साथ में बिठाए, बिठा के प्रकाशानंद सरस्वती श्री चैतन्य महाप्रभु से कुछ प्रश्न पूछते हैं, खास करके वो तीन प्रश्न पूछते हैं। पूछते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि आप तो एक मायावादी सन्यासी हो, आपने दीक्षा लिया, आपने केशव भारती से दीक्षा लिया, तो आप एक भारतीय होने के नाते हमारे झुंड से आप मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों, आप वाराणसी में रहने के बावजूद भी हमारा साथ मिलते जुलते क्यों नहीं हो, आप कहीं और अलग जाके क्यों रहते हो, आप तो हमारे हो। दूसरा प्रश्न ये पूछा कि आप तो एक मायावादी सन्यासी से दीक्षा लिया है, तो आप मायावाद सिद्धांत को स्वीकार किए, तो आपको वेदांत पढ़ना चाहिए, आप वेदांत को पढ़े बिना आप क्या कर रहे हो, एक भावुक जैसा क्यों नाच रहे हो आप, एक भावुक का मतलब मूर्ख जैसा क्यों नाच रहे हो, रास्ते में जाना कृष्ण का नाम लेना मूर्खता, ये क्या है। आपको सन्यासी को एक ध्यान करना, तपस्या करना, वेदांत का अध्ययन करना सन्यासी का कार्य होता है, ये नाचना गाना ये क्या है, हाँ ये हमको समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे बताइए। तो आप एक भगवान जैसे आपके तेज है आपके शरीर में, ये होने के बावजूद भी इज एक्टिविटीज अपीयर्ड अनस्पिरिचुअल, आपके जो कार्यकलाप है ऐसा लगता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के कार्यकलाप जैसे नहीं लगता है। तो इस प्रकार श्री प्रकाश आनंद सरस्वती श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाश आनंद सरस्वती की इस बातों को सुना तो उन्होंने बताया कि आप जो बोल रहे सही बोल रहे कि मैं तो एक भाव के जैसे इधर उधर नाचता हूँ, वेदांत का अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, ये सही बात है। क्योंकि जब मैंने दीक्षा लिया था तब केशव भारती से हमने प्रश्न पूछा, हमने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो केशव भारती ने हमको बताया कि तुम तो एक मूर्ख हो, मूर्खों के लिए वेदांत सूत्र वगैरह वो पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है उनको, या पढ़ नहीं सकते उनका बुद्धि नहीं है, तो वेदांत सूत्र क्या पढ़ेंगे, तो आप बस हरिनाम जप करो। तब उन्होंने एक भागवतम का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक को हमको सिखाया। तो श्री चैतन्य महाप्रकाश आनंद सरस्वती को बता रहे कि केशव भारती ने मुझे सिखाया, मेरे गुरु ने, कि भागवतम का ये श्लोक है, हरेर नाम हरे सॉरी भागवतम का नहीं सॉरी ब्रह्मवैवर्त पुराण का ये श्लोक है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम तदो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस श्लोक को हमको सिखाए तो बार बार मैं इस श्लोक को उच्चारण करता हूँ, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने लगा। और क्या हुआ, जैसे मैं हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करने बैठा तो क्या हुआ, मेरे अंदर सारे प्रकार के भाव उतार उत्पन्न हुए, कभी हंसता हूँ कभी आता हूँ कभी रोना शुरू हो जाते हैं, सारे जितने भी आनंद के या जो एक्सटेसी है वो सब अष्ट सात्विक वार मेरे शरीर में उत्पन्न हुए। तो मैं तुरंत अपने गुरु के पास गया, मैंने गुरु को निवेदन किया कि मेरे मैं जैसे नाम लेता हूँ नाम लेना बंद नहीं होता है, इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो रहा है तो मैं क्या करूँ। तब मेरे स्पिरिचुअल मेरे गुरु ने बताया कि ये जो है ये हरि नाम लेने का सिद्धि यही है, रियल पर्पज ऑफ चैंटिंग होली नेम्स, अगर कोई व्यक्ति हरिनाम ग्रहण करता है तो ये स्वाभाविक लक्षण है हरिनाम लेने का, क्योंकि ये हरिनाम हरे कृष्ण मंत्र जप करने से कृष्ण प्रेम का उदय होता है हृदय में, जैसे कृष्ण प्रेम का उदय के ये सारे सिम्टम्स है। तुमने अभी सारे शास्त्रों का सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त किया, जीवन का सिद्धि को प्राप्त किया, तुमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यही करते जाओ, हरिनाम लेते रहो और हरिनाम को प्रचार करते रहो। तब श्री प्रकाशानंद सरस्वती ये बात सुनने के बाद वो बोलते हैं, ये तो हम समझते हैं कि बहुत भाग्यवान व्यक्ति को ही हरिनाम का हरिनाम मिलता है और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत भाग्यवान व्यक्ति को प्राप्त होता है, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि आप वेदांत को क्यों नहीं पढ़ते हो, वेदांत में कौन से खराबी है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती बताते हैं कि मैं तो ठीक है मैं समझ गया वेदांत को पढ़ना चाहिए, लेकिन आप जो वेदांत पढ़ रहे हो वेदांत पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो वो जो वेदांत है वो उसमें प्रॉब्लम है, वो गड़बड़ है, क्योंकि वो जो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य उन भाष्य पढ़ रहे हो जो शंकराचार्य के द्वारा रचित है, ये शंकराचार्य के द्वारा रचित जो वेदांत सूत्र है उनका भाष्य है वो कोई व्यक्ति अगर सुनता है तो सर्वनाश हो जाता है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये बातें बता रहे प्रकाश आनंद सरस्वती बहुत शांति से वो सुन रहे हैं। तो इधर इस प्रकाश आनंद सरस्वती और श्री चैतन्य महाप्रभु संवाद में हम देख सकते हैं कि प्रकाश आनंद सरस्वती के जो प्रश्न हैं वो सब कैसे प्रकार के प्रश्न हैं, परिप्रक्षा, एक है प्रतिपक्षा दूसरा है परिप्रक्षा। जैसे कोई व्यक्ति प्रश्न दो प्रकार का किया जा सकता है, एक है उनको मन में प्रश्न है या डाउट है, संशय है। किसके ऊपर संशय है? सब्जेक्ट के ऊपर संशय है। लेकिन एक का संशय किसका है, किसके ऊपर है? वो वक्ता है उसके ऊपर संशय है। जैसे अर्जुन भी एक प्रश्न पूछे थे भगवान से, जब भगवान भगवद्गीता में 4वें अध्याय में उन्होंने कहा कि इमं विवस्वते युगं प्रोक्तवान अहमव्यम विवस्वान मुने प्रहामृक्षाब्रवीत। मैं सबसे पहला ज्ञान किसको दिया था? विवस्वान को दिया था। वन विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इश्वा को दिया। इस प्रकार एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदो, इस प्रकार परंपरा के अंतर्गत ज्ञान आता गया। तो भगवान ने जिस प्रकार ये बताया तो अर्जुन के अंदर एक संशय उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने पूछा कि अपरम भवतो जन्म परम भवत विवस्वतः कथम एतद् विजानी हम प्रोक्तवान तुमादो प्रोक्तवान इति। तो अर्जुन ने पूछा भगवान से, हे कृष्ण आप बोल रहे हो आपने एक ज्ञान विवस्वान को दिया, लेकिन ये है कि विवस्वान को तो आप, मैं ये कैसे समझ सकता हूँ कि आपने विवस्वान को दिया? क्योंकि परम भवतो जन्म, परम भवतो जन्म, आपका जन्म जो है विवस्वान के बाद हुआ, विवस्वान का जन्म आपसे पहले हुआ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने इस ज्ञान को उनको दिया? ये प्रश्न नहीं पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने क्या पूछा? खत्म एतद् विजानीयः, मैं उस बात को कैसे समझूं? तो इधर दो प्रकार का प्रश्न है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आपने विवस्वान को कैसे बताया? उन्होंने पूछा, ये नहीं पूछा आपने विवस्वान को कैसे बताया, ये बात नहीं पूछा उन्होंने। उन्होंने क्या पूछा? आपने विवस्वान को ये बात बताया है, मैं इस बात को कैसे समझूं? इन दोनों के बीच में बहुत सूक्ष्म अंतर है। ये एक जगह है कि आप कैसे बताया, कैसे बताया मतलब इसमें डाउट है, आपने उनको बताया नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ झूठ है उसके अंदर। तो दूसरा जगह क्या है, मैं स्वीकार करता हूं कि आपने विवस्वान को इस बात को बताया, गीता का ज्ञान आपने दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को, इसलिए मुझे क्या कीजिए, समझाइए। खत्म ये तद विजानिया, मैं कैसे समझूं? तो इधर प्रकाश आनंद प्रश्न जो है वो भी वैसे ही प्रश्न है, अर्जुन जैसा, मैं इस बात को कैसे समझूं? तो ये प्रकाश आनंद सरस्वती इतने बड़े मायावादी सन्यासी होने के बाद भी उनका प्रश्न इस प्रकार क्यों है, एक भक्त जैसा प्रश्न क्यों है? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने सेवा किया था। क्या सेवा किया था? उन्होंने हाथ दिया था, बस उन्होंने हाथ दे के बोला कि आप इधर से उठो, आके इधर हमारे साथ बैठो। बस एक छोटा सा सेवा श्री चैतन्य महाप्रभु करने की वजह से उनके अंदर इस प्रकार का सुकृति पैदा हुआ, ताकि वो उस प्रकार के जो प्रतिपक्ष परिपक्षा प्रश्न है वो कर सके, जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा है। लेकिन उधर हम देखते हैं कि सारंग भट्टाचार्य का चर्चा जो हम कल करने वाले, उसमें सारंग भट्टाचार्य का जो प्रश्न है वो किस प्रकार के प्रश्न थे? इस प्रकार के प्रश्न नहीं थे प्रकाशान सरस्वती के, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सारंग भट्टाचार्य बार बार पूछते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है एकदम हां करके खंडन करते थे सारंग भट्टाचार्य को। तो सारंग भट्टाचार्य सोचते हैं कि अरे ये तो एक भावुक है, ये तो एक सन्यासी है, तो मैं अभी श्री चैतन्य महाप्रभु को सिखाऊंगा। इसलिए गोपीनाथ आचार्य को बताते हैं सारंग भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य तुम बताओ श्री चैतन्य महाप्रभु को कि मेरे से आके वो शिक्षा ग्रहण करे, वो तो महान सन्यासी है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर उनको सन्यास धर्म बना के रखना है तो उनको क्या करना है, उनको सन्यास धर्म हमेशा बना के रखने के लिए उनको वेदांत का अध्ययन करना होगा, और साथ साथ में वो तो एक भारती है, केशव भारती से दीक्षा लिया है, केशव भारती तो निम्न स्तर का सन्यासी है, मैं उनको महान स्तर का सन्यासी बनाता हूँ, मैं उनको सरस्वती बनाऊंगा, तो या और जो उच्च कोटि के सन्यासी बनाऊंगा। सारंग भट्टाचार्य इस प्रकार की भावना था, वो अपने आप को बड़े समझते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। वो पहले से सोच रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो बोल रहे हो गलत है, लेकिन इधर प्रकाशानंद सरस्वती का भावना अलग है, ये परिपक्षा। इसके अंदर उन्होंने प्रश्न पूछा कि ठीक है आप जो बोल रहे हरि नाम के बारे में, हाँ ये बहुत सत्य है, और साथ साथ में ये नारायण का प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, ये साधारण जीव को संभव नहीं, बहुत भाग्यवान व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो ये बात सही है, लेकिन आप वेदांत को क्यों नहीं पढ़ते हो? Why are you not studying the वेदांत? तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब आप वेदांत शब्द इस्तेमाल करते हो तो आप सोचते हो कि वेदांत सूत्र के ऊपर केवल एक ही भाष्य है, लेकिन अस्तित्व में वेदांत सूत्र के ऊपर केवल एक ही भाष्य नहीं बल्कि चार वैष्णव आचार्यों ने भाष्य किया है। तो हमको ये जानना चाहिए इधर इस प्रसंग में वेदांत वेदांत शब्द आता है तो वेदांत होता क्या है, व्हाट इज दिस वेदांत सूत्र। ये वेदांत जो है वो सारे वेदों का अंत है, इट इज द एंड ऑफ वेदांत, क्योंकि शब्द में उनका मतलब है वेदांत में सारे वेद, इतने सारे वेद हैं, चार वेद है उनके अंदर 1,00,000 श्लोक है, 1,000,00,000 मंत्र है, वो सारे वेदिक मंत्रों में कुछ ऐसे है, कुछ सेक्शन है उसको बोला जाता है उपनिषद। इन उपनिषदों का सूत्र रूप में व्यासदेव ने रचना किया वेदांत सूत्र करके। सूत्र मतलब बहुत सारा जो मतलब को एक कुछ ही शब्दों में संग्रह किया गया जिसको वेदांत सूत्र बोला जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है, जो गणित में फॉर्मूला होता है और उसके ऊपर फॉर्मूला को एक्सपेंड करते जाएंगे, 4-5 पेज आप लिख सकते हो, लेकिन 4-5 पेज का जो वर्णन है उनको एक सूत्र रूप में छोटा सा वर्णन किया जाए रखा जाता है। इसलिए सारे उपनिषद जैसे 108 तो प्रमुख उपनिषद है, लेकिन मूल रूप में अस्तित्व में टोटल 1,320 उपनिषद से 1,320 उपनिषद हो, उनमें से केवल अभी प्रमुख 108 उपलब्ध है। वैसे तो 216-218 उपलब्ध है, लेकिन उनमें से 108 प्रमुख उपनिषद है। ये सारे उपनिषदों का ज्ञान को व्यासदेव ने क्या किया, सूत्र रूप में रचना किया और उनको बताया कि ये जो है वेदांत है। जहां भी जाएंगे आप अगर आपको प्रमाणिक संप्रदाय के रूप में स्वीकार करना है किसी को, तो ये वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य होना जरूरी है। वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य के बिना कोई व्यक्ति एक प्रमाणिक संप्रदाय करके अपने आप को घोषणा नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल बोलते हैं हम ये संप्रदाय के, हम वो संप्रदाय के हैं, लेकिन उनको वेदांत का जरा सा हल्का सा भी उनका ज्ञान भी नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सारभट्टाचार्य को कि आपके अंदर थोड़ा सा गलत फहमी है, आप सोच रहे हो कि वेदांत मतलब केवल शंकराचार्य का भाष्य, लेकिन ये शंकराचार्य का भाष्य जो भ्रांतिकर भाष्य है और इस वेदांत के ऊपर और वैष्णव आचार्यों ने ये टीका किया है, इसलिए हम वो लिस्ट दिया है। देखिए अब लक्ष्मी संप्रदाय का जो फाउंडर रामानुजाचार्य ने, उन्होंने क्या किया, विशिष्टाद्वैत के ऊपर सिद्धांत स्थापना किया। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य ने, उन्होंने शुद्ध द्वैत के ऊपर या सिद्धांत को स्थापना किया। इस प्रकार रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी और निम्बारक आचार्य भी वो लोग किए। तो ये नोट्स अभी दिए नहीं, हम कल देंगे आपको, डोंट वरी अबाउट दिस नोट्स, यू विल गेट दैट नोट्स, क्योंकि मैं सोचा कि थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसको सरल बना के दिया जाए। तो ये वेदांत सूत्र होता क्या है हमने अभी तक जाना, तो ये जाना कि वेदांत सूत्र के ऊपर केवल शंकराचार्य के पास नहीं बल्कि और भी आचार्यों का भाष्य, ठीक है, श्रीमद रामानुजाचार्य, निम्बारक आचार्य, विष्णु स्वामी और मध्वाचार्य का भी भाष्य है। तो तब श्री चैतन्य महाप्रभु वेदांत सूत्र के बारे में और ज्ञान परिचय देते हुए बोलते हैं कि वेदांत सूत्र का वक्ता कौन है, स्वयं व्यासदेव। स्वयं व्यासदेव कौन, व्यासदेव कौन है, वो भगवान स्वयं है, इसलिए उनके अंदर कोई दोष नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वेदांत को समझना चाहता है तो उनको क्या करना है, खाली उनको उसका जो असली मुख्य अर्थ है उसको जानना होगा। उनके लिए कोई सर मोड़ के इधर उधर करके थोड़ मोड़ के अलग अलग प्रकार के संस्कृत की ग्रामर के शब्दों को इस्तेमाल करते हुए उनको इनडायरेक्ट मीनिंग को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य ने क्या किया, इन सारे वेद सूत्रों को इनडायरेक्ट मीनिंग को अपनाए, इसलिए उनका सही मतलब सही व्याख्या को उनको बताए नहीं। तो आगे चलते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इनको प्रकाशान संस्कृत वर्णन करते कि श्रीपाद शंकराचार्य ने सबसे पहला दोष क्या है उनकी टीका में, तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि जीव जो है वो भगवान है, लेकिन ये सदा सत गलत है, क्योंकि उपनिषदों में दोनों प्रकार के वर्णन है। कभी वर्णन है कि जीव भगवान है, कहीं कहीं वर्णन है जीव भगवान से अलग है। जीव भगवान है और जीव भगवान से अलग है, दोनों व्याख्या है, तो इसलिए हमको दोनों को स्वीकार करना चाहिए। किस प्रकार स्वीकार करेंगे? जहां जहां बोला गया है कि भगवान और जीव एक ही है, उधर ये समझना चाहिए कि भगवान और जीव गुणों की दृष्टिकोण से एक ही है। जहां जहां ऐसा बोला गया है कि भगवान और जीव अलग अलग है, तो ये जानना चाहिए कि मात्रा की दृष्टिकोण से जीव और भगवान अलग अलग है। जैसे जैसे कुछ उपनिषदों में बताया गया है, क्या है? तत्वमसि। तत्वमसि मतलब मैं वही हूं, मैं भगवान हूं। और कहीं बताया गया कि वासुपर्णा, जैसे एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे, तो वही उपनिषद, कोई और उपनिषद भी इस प्रकार वर्णन है, दो पक्षी बैठे हैं, दो, एक आत्मा एक परमात्मा करके बताया। और वो कुछ उपनिषद में क्या बताया गया कि तत्वमसि बताया गया। तो ये दोनों को उन्होंने क्या किया, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाश सांसद वर्णन करते हुए बताया, दोनों को हार्मोनाइज किया, समन्वय किया। तो प्रकाश सांसद और चतुर्भुज और बात को सुनना चाहते थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि प्रकाश सांसद से सुनो, शंकराचार्य ने भगवान को निर्गुण करके वर्णन किया, ये भी गलत है। भगवान के अंदर ऐश्वर्य से भरे हुए है, नारायण अनंत गुण संपन्ना श्रीमन नारायण, नारायण जो है, भगवान जो है उनके पास गुणों से युक्त है, वो बहुत सुंदर है, उनके अंदर बहुत सारे गुण है। तो मायावादी लोग क्या बताते हैं शंकर भाष के अनुसार, नहीं, बस भगवान के पास कोई गुण नहीं, निर्गुण निर्गुण ब्रह्म को उपासना करते हैं, उनका कोई रूप नहीं, उनका कोई सुंदरता नहीं, उनका हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, इस प्रकार वर्णन करते हैं। तो भले ही कुछ उपनिषद हम जानते हैं कि कुछ उपनिषद क्या बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, निर्गुणम, जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं निर्गुणम गुण भोक्तुचा, ही डजंट हैव एनी क्वालिटीज, कोई गुण नहीं है। लेकिन कुछ जगह भगवान का गुणों का वर्णन है, जैसे वैदिक संहिता में, जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान का रूप का वर्णन है, उनका सुंदरता का वर्णन है। तो ऐसा कैसे, वो एक ही उपनिषद, उपनिषद में आप एक जगह भगवान निर्गुण है वर्णन किया गया, कहीं भगवान का गुणों का वर्णन किया गया, ये क्यों है? तब श्री चैतन्य महाप्रकाश से बताते हैं कि ये जो निर्गुण बताया गया है वेदों में, ये बहुत जरूरी है बोलना, क्योंकि अगर केवल भगवान का ही गुणों से युक्त है वर्णन किया जाता है, तो भगवान का आंखों का सुंदरता का वर्णन किया जाएगा, सब लोग सोचेंगे वाह भगवान के कितने सुंदर आंख है, मेरे से भी सुंदर होगा ना, मेरे आंखों से भी सुंदर होगा। तो तुरंत क्या लोग सोचेंगे, तो अपनी आंखों से भगवान का आंख बहुत सुंदर है, मेरे हाथ से बहुत शक्तिशाली उनका हाथ है, तो आप अपने से तुलना करने बैठ जाएंगे भगवान। तो इसलिए सबसे पहला शास्त्रों में एक खंडन किया जाता है, भगवान कौन है, वो तुम्हारे जैसे नहीं है, वो गुणों से युक्त नहीं है, उनके पास कोई गुण नहीं है, यानी उनके पास कोई भौतिक गुण नहीं है। जब शास्त्रों में निर्गुणम ये शब्द आता है, ये जानना चाहिए कि शास्त्र भगवान जो है वो निर्गुण है। किस प्रकार के निर्गुण है, वो उनके पास कोई भौतिक गुण नहीं है, उनके पास कोई भौतिक गुण नहीं है, मतलब क्या है, उनके पास कोई आध्यात्मिक गुण है, तो आध्यात्मिक गुणों का वर्णन किया जाता है। तो जहां जहां शास्त्र में वर्णन किया गया है निर्गुणम करके, तब हमको ये समझना चाहिए कि भगवान के पास कोई भौतिक गुण नहीं है। लेकिन उसी साथ में हमको ये जानना चाहिए कि भगवान के पास हर जगह आध्यात्मिक गुण है। तो तब श्रीपाद शंकराचार्य के तत्व के बारे में वर्णन करते हैं, तब श्रीपाद शंकराचार्य के तत्व के बारे में वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि आप ये जानो कि श्रीपाद शंकराचार्य कौन है। शंकराचार्य कोई और नहीं है, वो साक्षात शिव है। भगवान शिव जी को आदेश दिए, उन्होंने आदेश देके क्या बोला कि आप जाओ, आप जाके अभी मायावाद भाष्य का प्रचार करो, वेदों का गलत मतलब को आप सबके सामने प्रस्तुत करो। तो ये भगवान की आज्ञा से श्री शिव जी स्वयं शंकराचार्य के रूप में आए और ये मायावाद भाष्य को प्रचार किए। तो ये मायावाद भाष्य को क्यों प्रचार करना पड़ा, क्योंकि इतिहास में जाएंगे, सबसे पहला बुद्ध के पहले, बुद्ध अवतार के पहले, सभी लोग वैदिक ग्रंथों को, वैदिक नियमों को पालन कर रहे थे। लेकिन कैसे पालन कर रहे थे, जैसे आधा मुर्गी का फिलॉसफी है, न्याय है, अर्ध कुकुट न्याय है, उसको पालन कर रहे थे। जैसे एक सोने का अंडा देता है मुर्गी, तो वो सोचने लगी, अरे घर की स्त्री ये बहुत अच्छा है मुर्गी, तो रोज सोने का अंडा देती है, लेकिन उसका पीछे के भाग से अंडा आता है तो आगे के भाग से खाता है, तो आगे वाला भाग जो अच्छा नहीं है तो पीछे का भाग जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि तो पीछे से अंडा आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो मुर्गी को काट दिया, हाँ, तो आगे वाला भाग को फेंक दिया। अगला दिन आके देखती पीछे वाला भाग से थोड़ा सा अंडा है, कोई अंडा नहीं आया। तो वैसे ही उस समय सभी लोग वैदिक नियमों को पालन कर रहे थे, लेकिन वही नियम जो उनको अच्छे लग रहे थे। कभी कभी ऐसा हम लोग नहीं करते, हाँ, बहुत सारे नियम पालन करते हैं, लेकिन कैसे, वो वही नियम जो हमको अच्छा लगता है। तो वैसे ही सभी लोग वैदिक वेदों के वही नियम पालन कर रहे थे जो उनको अच्छा लगता था, यानी वेदों में लिखा गया था आपको सैक्रिफाइस करो, यानी आप अलग अलग देवताओं को, अलग अलग इनको इस प्रकार जाके यज्ञ करके पशुओं को बलिदान को लिखा गया है। तो सभी लोग पशुओं को वध करने बैठ गए, क्योंकि वेदों में कहा है हम भी करेंगे। तो भगवान देखे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतं विद्यामदर्शनस्य, उन्होंने देखा कि वेदों के नाम के ऊपर अधर्म का प्रचार हो रहा है, तो भगवान ने क्या किया, बुद्ध के रूप में वो प्रकट हुए। जैसे बुद्ध के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने क्या किया, अहिंसो परमो धर्म, तो अहिंसा का प्रचार किया उन्होंने। तब लोगों ने पूछा कि आप अहिंसा अहिंसा बोल रहे, लेकिन वेदों में तो हिंसा का वर्णन है। तो बुद्ध ने बोला, वेदों को भूल जाओ, निंदसी यज्ञ विधेयम, सारे जितने भी वेद से उत्पन्न हुआ जो यज्ञ विधि है, बुद्ध ने बोला उनको आप स्वीकार मत करो। तो सभी लोग वेदों को त्याग कर दिए, त्याग करके उन्होंने क्या किया, क्या स्वीकार किया, हाँ, अहिंसो परमो धर्म। तो सब लोग पूछने लगे भगवान कौन है, तो बुद्ध चुप रहे, लेकिन सभी लोग सोचे बहुत, बुद्ध जो है चुप रह गए भगवान के मामले में, इसका मतलब क्या है, भगवान नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने एक बड़ा सा नास्तिकवाद का प्रचार करने लगे। जब नास्तिकवाद इतना प्रचुर मात्रा में प्रचार हो गया, तो भगवान को लगा, अरे कोई वेदों को मानने के लिए तैयार नहीं है, और सारा जगत जो है नास्तिक हो गया, भले ही वेजिटेरियन नास्तिक को, नॉन वेजिटेरियन नास्तिक को, दोनों में क्या अंतर है, हाँ? तो अभी सब लोग क्या हो गए, हाँ, भले ही वो शाकाहारी बन गए, अहिंसा को पालन कर रहे, लेकिन सभी लोग नास्तिक हो गए। तो तुरंत उन नास्तिक व्यक्ति को जाके बोलेंगे, देखो मैं बांसुरी पकड़ के आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे सेवा करो, तो कोई स्वीकार करेगा? तो इसलिए भगवान ने एक योजना बनाया, तो उन्होंने बोला शिव जी को, आप जाओ, आप जाके वैदिक सत्ता को वापस लेके आओ, लेकिन उन्हीं वेदों को गलत मतलब बताओ। तो शिव जी स्वयं पद्म पुराण में पार्वती को बताते हैं, बोलते हैं कि मायावादम असत शास्त्रम बौद्धम प्रचन्न मुच्यते तस्मात् कल्पितम देवी कलो ब्राह्मण रूपिणा। मायावादम असत शास्त्रम, ये मायावाद जो है वो असत शास्त्रों के ऊपर आधारित है। बौद्धम प्रचन्न मुच्यते, बौद्ध धर्म है, बौद्ध फिलॉसफी है, बौद्ध दर्शन है, लेकिन प्रचन्नम द कवर्ड बुद्धिज्म। तब शिव जी, साक्षात शिव जी कैसे आए, कलो ब्राह्मण रूपिणा, कलयुग में ब्राह्मण का रूप धारण करके शैवा शंकराचार्य के रूप में आए, और उन्होंने क्या किया, भारत को 3 बार भ्रमण किया। 8 साल की आयु में उन्होंने संन्यास दिया, 32 साल तक उन्होंने अपना प्रकट लीलाएं किया, यानी केवल 16 साल या 24 साल में उन्होंने भारत को 3 बार भ्रमण करके सारे बौद्धों को भारत से उन्होंने भगा दिया और वैदिक सत्ता को वापस लाए। तब ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन सॉरी प्रकाशान को वर्णन कर रहे और बता रहे कि आपका जो मायावाद दर्शन है, श्रीपाद शंकराचार्य ने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये जो श्रीपाद शंकराचार्य ने उन्होंने क्या किया, वो गांति करके जो कुछ दर्शन है उन्होंने लाया, उन्होंने बोला कि ब्रह्म है, ब्रह्म जो है अविद्या के द्वारा प्रभावित होके वो ईश्वर बन जाता है। ये मायावाद को मायावाद क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां मायावाद भाष्य के अनुसार आप जो पूजा करते हो, कृष्ण राम नरसिंह वामन, ये सब जितने भी अवतार है, ईश्वर है, ये सब कौन कौन है, माया से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मायावाद को मायावाद बोला जाता है। बहुत खतरनाक फिलॉसफी है। श्रीपाद शंकराचार्य स्वयं शिव जी ने लिखा है, तो बहुत होगा, बहुत बुद्धिशाली होगा। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उनको खंडन किए। जैसे खंडन किए तो श्रीपाद शंकराचार्य का अस्तित्व के बारे में जैसे वर्णन किए, तो तुरंत क्या हुआ, प्रकाश आनंद सरस्वती को थोड़ा सा परिवर्तन होगा उनके हृदय में। तो उन्होंने पूछा कि आप जरा और बताइए कि वेदांत सूत्र के बारे में, तो मैं और जानना चाहता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वेदांत सूत्र के बारे में और आगे वर्णन करते हुए और अलग अलग तरीके से अलग अलग शास्त्रों की युक्ति से उन सबको खंडन करते हुए श्रीपाद शंकराचार्य के भाष्य को खंडन करते हुए उन्होंने वैष्णव सिद्धांत को स्थापना किया। जैसे वैष्णव सिद्धांत को स्थापना किया और हरिनाम की महत्ता को स्थापना किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो तुरंत उधर ही उधर के जो प्रकाश आनंद सरस्वती के कुछ एक शिष्यों ने या एक शिष्य वो खड़े हो गए, खड़े होके तुरंत घोषणा करने लगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो वर्णन है मायावाद भाष्य के वेदांत सूत्र का जो वर्णन है वो बहुत सुंदर वर्णन है, और साथ साथ में हम अभी श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मायावाद वेदांत के ऊपर वर्णन सुनते उनका एक्सप्लेनेशन सुन के हम अपने मायावाद जो सिद्धांत है वो हम भूल गए, और कितना भी व्यक्ति प्रयास करे ये मायावाद सिद्धांत को पढ़ते हुए ये भौतिक भाव बंधन से वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। असलियत में ये हरेर नाम ये केवल कलो नास्ति विनास्ति विनास्ति गतिरन्यता, ये जो मंत्र असलियत में सारे जितने भी वेदांत का सार है, सारे वेदांत का सार यही है हरि नाम उच्चारण करना। खास करके कलयुग में भक्ति यानी हरिनाम के अलावा और कोई रास्ता है नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य अस्तित्व में वेदांत का जो मुख्य अर्थ है उन्होंने छुपा के रखा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वर्णन है बहुत परफेक्ट है और ऐसा लगता है कि वो साक्षात नारायण है और हमको उद्धार करने के लिए उनका भी आगमन हुआ है। और जैसे ये प्रकाश आनंद सरस्वती के जो शिष्य इस प्रकार उन्हें वर्णन करके बैठ गए, तुरंत प्रकाश आनंद सरस्वती खड़े होके बोलते हैं कि अभी श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वर्णन है ये मैं स्वीकार करता हूँ, सर्वोच्च वर्णन है, सारे वेदांत सूत्र का उन्होंने सार हमको प्रदान किया है, और मैं जानता हूँ कि हम कि सारे वेदों के ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार अपना टीका किया है। ये छह प्रकार के जो दार्शनिक है वो सब भ्रांति करके दर्शन है। ये छह प्रकार के दर्शन को क्या बोलता है, षट दर्शन बोला जाता है। कोई व्यक्ति आके बताया कि उपनिषदों का अध्ययन करके उन्होंने बोला कि सारे जो जगत का स्रोत क्या है, अणु सारे चीजों का स्रोत है, लेकिन ये जो गौतम जिस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है ये जो है गलत है, न्याय सिद्धांत गलत है, और वैशेषिक सिद्धांत ये भी गलत है क्योंकि उसके अंदर कोई बेसिस ही नहीं है, और ये षट दर्शनों के जो प्रवर्तक है उन सब का अधूरा ज्ञान है। अगर पूर्ण ज्ञान किसी के पास अगर है तो केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के पास है। तो इस प्रकार ये प्रकाश आनंद सरस्वती खंडन करते हुए बोलते हैं कि अगर सच में अगर किसी को वेदों को अध्ययन करना है तो तर्क के द्वारा वेदों को नहीं समझा जा सकता है, केवल महाजन के अनुगत में चलते हुए, महाजन ने गता सुपंता महाजन का लिस्ट पूरा बताते हुए प्रकाश आनंद सरस्वती श्री चैतन्य महाप्रभु गुणगान करते हैं, बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए महाजन है और उनकी पदचिन्हों में चलते हुए हमको वेदों को स्वीकार करना है। इस प्रकार वाराणसी के जितने भी मायावादी है खास करके प्रकाश आनंद सरस्वती उनके सारे दृश्य अभी उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु फिर वापस पहुंच गए महाराष्ट्र ब्राह्मण तब चंद्रशेखर आचार्य घर में, और अगला दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अभी बिंदु माधव मंदिर में गए और उधर प्रकाश आनंद सरस्वती तपन मिश्रा चंद्रशेखर आचार्य और उनके कुछ और संगियों के साथ वो कीर्तन में भाग ले रहे थे। वो कीर्तन क्या कर रहे थे, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, इस प्रकार कीर्तन करने लगे। अस्तित्व में ये जो कीर्तन है हरिहराय नमः कृष्ण इट इज अनदर फॉर्म ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, ये हरे कृष्ण महामंत्र का दूसरा स्वरूप है। ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में हरिहराय नमः कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे कीर्तन करने लगे तब मायावादी सन्यासी हजारों सन्यासी प्रकाश आंसर सब लोग श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए आए। जैसे दर्शन करने के लिए आए तुरंत प्रकाश आनंद सरस्वती श्री चैतन्य महाप्रभु को चरण पकड़े, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन करना बंद किया। तब प्रकाश आनंद सरस्वती पूछते हैं आपका जो वेदांत सूत्र का जो दर्शन है हम सुन के बहुत हमको बहुत पसंद आया। आपने तो बताया कि वेदांत सूत्र को हमको समझना चाहिए, उनका कुछ बाह्यवाद भाष्य खंडन किया। वेदांत सूत्र का जो मूल जो उद्देश्य है वो है कृष्ण को समझना, आपने बताया, लेकिन फिर भी वेदांत सूत्र का व्याख्या तो आपने नहीं किया है। तो वेदांत सूत्र का व्याख्या क्या है, मैं वेदांत को और अच्छी तरह से समझना चाहता हूँ तो वेदांत का व्याख्या कीजिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि वेदांत सूत्र को आपको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई और व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब वेद व्यास ने वेदांत सूत्र को रचना किया था तो रचना किए थे उसी समय उन वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने स्वाभाविक भाष्य को रचना किया। वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य क्या है? श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य है। तो अगर आपको वेदांत सूत्र का अध्ययन करना है आपको केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ना होगा। तो सबसे पहला जो ज्ञान भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी को चार श्लोक प्रदान किया और ये चार श्लोक अस्तित्व में भगवान ब्रह्मा जी को दीक्षा दिया, यानी दीक्षा के समय क्या दिया जाता है, गायत्री दिया जाता है। तो भगवान ने ये चार श्लोक जो है गायत्री का स्वरूप के रूप में ब्रह्मा जी को प्रदान किया। यानी भगवान जो जिनको ओम के द्वारा संबोधित किया जाता है वही ओम विस्तार करता है वेदांत गायत्री के रूप में। वही गायत्री को भगवान ने ब्रह्मा जी को चार श्लोक जो चतुश्लोकी भागवतम के रूप में होता है उनको प्रदान किया, और वही चार श्लोक भागवतम जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ भगवान से वही ब्रह्मा जी ने नारद को प्रदान किया, नारद ने व्यास को प्रदान किया, व्यास देव ने उनको विस्तार करते हुए उन्होंने क्या किया, ये 18,000 श्लोकों के रूप में भागवतम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो वही जो वेदांत है वही भागवतम के रूप में व्यास देव ने हमको प्रदान किया। तो इस प्रकार श्री चतुश्लोकी भागवतम का श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं। आमेवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत् परम पश्चादहम् यो अवशिष्येत सः अस्मि हम। तो तब श्री चैतन्य महाप्रभु और आगे वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवतम का महिमा का वर्णन करते हैं। सर्व वेदांत सारमिति श्रीमद् भागवतम इष्यते। तो श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करना चाहिए। अगर आपको वेदांत को समझना है आप श्रीमद् भागवतम को अच्छी तरीके से अध्ययन करो, और कैसे अध्ययन करो, एक गुरु का मुख से अध्ययन करो। तो इधर हम देख सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और प्रकाश संवाद में क्या श्री चैतन्य महाप्रभु क्या स्थापित कर रहे हैं। ये स्थापित कर रहे हैं कि गुरु के मुख से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना ये हमारा अभिधेय है करके निरूपण कर रहे हैं। He is establishing that hearing Srimad Bhagavatam from the from a bona fide spiritual master is the process, is the abhidhaya, and that can reveal वो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना ये वेदांत का और सारे वेदांत सब चीज का निचोड़ इसके अंदर है। श्रीमद् भागवतम के पहले या शुरुआत में खंडन किया गया धर्म अर्थ काम मोक्ष को खंडन किया, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परवों निर्मत सराणाम सदाम वेद्यम, और साथ साथ में पहला श्लोक में वर्णन किया किस प्रकार सत्यम परम धीमहि। ये धीमहि शब्द कहाँ से आता है, गायत्री से आता है। तो ये भागवतम क्या है, गायत्री का विस्तृत वर्णन है। गायत्री कहाँ से आता है, ओम है, और ओम कौन है, भगवान स्वयं है। और सारा जो वेदों में वेदांत सूत्र में उन ओम का ये व्याख्या किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति भागवतम को समझता है तो अच्छी तरह से पढ़ता है तो उनको सारे वेदांत का बात मालूम पड़ जाता है। और भागवतम को कैसे समझना है, संबंध अभिधेय प्रयोजन के अनुसार समझना है, क्योंकि वेदांत सूत्र भी संबंध अभिधेय प्रयोजन के अनुसार ही प्रस्तुत किया गया है। तो अगर कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ता है तो ये सारे जो रहस्य वो पता लग जाता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ उदाहरण देते हैं किस प्रकार श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का वर्णन है करके। सबसे पहला सूत्र है वेदांत का, वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी ब्रह्म वो है कौन, हु इज दैट ब्राह्मण, उसका भागवतम में क्या व्याख्या दिया गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो ब्रह्म है कौन, वासुदेव है। और दूसरा सूत्र क्या है कि वेदांत सूत्र का, कि जन्मादि यस्यतः, इसलिए हम देखते हैं कि भागवतम का शुरुआत में कैसा होता है, जन्मादिदान्वयादितश्चर्तेष्विघ्नेश्वराः। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाश को पूर्ण तरीके से कन्विंस कर देते हैं। जब कन्विंस कर देते हैं तब सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रकाशान सरस्वती और जितने भी उनके शिष्य हैं वो सभी लोग कृष्ण का कीर्तन में करना शुरू कर देते हैं। तब महाराष्ट्रीय ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु याद दिलाते हैं कि हमने सुना कि आपने श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत के एक बहुत महत्वपूर्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु को याद दिलाया कि आपने सनातन गोस्वामी पाद को भागवतम के गुह्य श्लोक के ऊपर 61 व्याख्या किए। वो गुह्य श्लोक क्या है उसको बोलते हैं आत्माराम श्लोक। आत्माराम श्लोक इस प्रकार है, क्या है वो, आत्मारामस्य मुनयो निर्दन्ता विरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुकिं भक्तिं इत्थं भूतकरो हरिः। ये श्लोक के अनुसार ऐसा है कि आत्मारामस्य मुनयो जो एकदम ब्रह्म में स्थित है, संपूर्ण करके अपने आप में प्रसन्न है, आत्मा में रमण करते हैं, वैसे लोग भी निर्दन्ता विरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुकिं भक्तिं इत्थं भूतकरो हरिः। भगवान की जैसे लीलाएं वो श्रवण करते हैं उनका मन भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। ये भौतिक जगत के किसी भी चीज के प्रति उनका आकर्षण नहीं, आत्मा अपना में अपने आप में संतुष्ट है। यस्य आत्मरतिरेव आत्मसंतुष्टस्य मानवः, अपने आप में वो रति है, अपने आप में कुछ संपूर्ण रूप से संतुष्ट है, उनको कोई किसी चीज के प्रति आकर्षण है ही नहीं भौतिक चीज के प्रति। वैसे जो मुक्त आत्मा है वैसे लोग भी जैसे भगवान का लीला का श्रवण करते हैं उनका आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ये भागवतम का श्लोक। असल में सुखदेव गोस्वामी वो जन्म से ही वो कौन थे, वो मुक्त आत्मा थे, लेकिन जैसे सुखदेव गोस्वामी ने ये बात को सुना, इस श्लोक को सुना, अहो बकियाम स्तनकाल कूटम, क्या है अहो बकियाम स्तनकाल कूटम, इस श्लोक के अनुसार ऐसा वर्णन किया जाता है कि वो व्यक्ति जिसने जिसको मारने के लिए एक राक्षसी आई, पूतना आई, बकिया मतलब बकासुर के बहन, यानी पूतना आके क्या करने लगी, वो सुखदेव गोस्वामी पाद को कृष्ण को मारने के लिए आई। तो अगर कृष्ण ऐसा जो व्यक्ति उनको मारने के लिए आए उनको धात्री का स्थान प्रदान करते हैं, केवल नाटक किया माँ का, तो उनका माँ का रूप स्थान प्रदान करते हैं लेकिन मारने के लिए आए। अगर कोई व्यक्ति उनको श्रद्धा से सेवा करता है तो उनका क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति भाव के साथ उनका प्रेम सेवा करता है उनका क्या स्थिति होगा, अगर सच में कोई प्रेम से उनका सेवा करता है उनका क्या स्थिति होगा। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक को सुना तुरंत उनका जो है मन, वो कौन व्यक्ति है उनके बारे में और जानना चाहता हूँ, इस प्रकार उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ, कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को इस श्लोक को 61 टाइम्स 61 व्याख्याएं करते हैं, बहुत सुंदर उसको व्याख्या सुनते रहेंगे, उनको एनालिसिस करने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है, उनके लिए बहुत हमारा समय और एकदम मेहनत करते हुए परिश्रम करते हुए उनको समझना होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी व्याख्या सुनाया, तो वही व्याख्या जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पर 61 व्याख्या सुनाया था इन श्लोक का, वही श्लोक का व्याख्या फिर वापस श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाश आनंद सरस्वती को सुनाते हैं। और अस्तित्व में यही श्लोक के ऊपर व्याख्या उन्होंने 18 तरीके से 18 व्याख्याएं उनको सुनाया था सरम भट्टाचार्य को। तो प्रकाशानंद सरस्वती को कन्वर्ट करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सारे बनारस की वासियों को उन्होंने पूर्ण तरीके से वैष्णव बनाया, और प्रकाशानंद सरस्वती और सारे उनके शिष्य हर जगह कहीं भी देखो श्रीमद् भागवतम के ऊपर ही चर्चा चलता है, श्रीमद् भागवतम के ऊपर ही वो अध्ययन करने लगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु वापस अभी जगन्नाथपुरी की ओर झारखंड की ओर जाने के लिए जब तैयार हो रहे थे तब तपन मिश्रा और प्रकाश और चंद्रशेखर आचार्य बोलते हम भी आपके साथ आएंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते अभी समय है, तब तक आप इधर रहो, हम जगन्नाथपुरी में बाद में आपसे मिलेंगे करके श्री चैतन्य महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी के लिए वो निकल जाते हैं। तो ये है प्रकाश आनंद सरस्वती का हृदय परिवर्तन करना, उसके अंदर बहुत तत्व के विचार वाली बातें वगैरह है, तो जो बहुत इनके अंदर रुचि रखते हैं, हम आशा करता हूँ सभी लोग रुचि रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे सामने कुछ वेदांत हुई ये सब कुछ आता है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु का चर्चा, प्रकाश आनंद सरस्वती चर्चा और सारम भट्टाचार्य के प्रति चर्चा, अगर अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेता है, जान लेता है, उनके सामने किसी भी प्रकार का गलत सिद्धांत आए तो उनको तुरंत खंडन कर सकता है, उनको तुरंत उनका जवाब दे सकते हैं। ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं है जो मायावादियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया हो उसका जवाब इन दो कन्वर्सेशंस में ना हो। तो इसलिए एक कुशल जो प्रचारक होना चाहते हैं तो उन लोगों को खास करके ये दो संवाद है, प्रकाशानंद सरस्वती का, श्री चैतन्य महाप्रभु का और सार भट्टाचार्य का संवाद है, उनको पढ़ लेना चाहिए। हमको स्वयं अनुभव है अस्तित्व में आजकल शुद्ध मायावादी जो शंकर भाष्य को अच्छी तरीके से जानने वाले बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही प्राय है, बस अपने आप को इधर से सुन लिए, इधर से कुछ ना कुछ भी बोलना शुरू कर देते, कुछ आधार भी नहीं था, कुछ लोग भी मालूम नहीं रहता, वो बस ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है बोलते बस, और उनका कुछ आधार नहीं रहता। लेकिन हमारे एक परिचय में एक व्यक्ति है, वो शंकर बचपन से उनको बस इसी इन्हीं के अंदर है, और उन्होंने PhD किया है, संस्कृत में किया है और तेलुगु भाषा दोनों में किया है, और संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी है, बहुत विद्वान व्यक्ति है। तब वो अलग अलग प्रकार से हमको प्रश्न पूछ रहे थे, ये कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो तब वो कट्टर मायावादी है, तब मैंने सोचा कि मैं उसके प्रति और कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, वो जो भी कुछ बोलेंगे मैं सुनूंगा, और उनको केवल प्रकाश आनंद सरस्वती और श्री चैतन्य महाप्रभु का संवाद और सार भट्टाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु का संवाद को खाली में उनको सुनाऊंगा। तो जैसे ये पूरा जैसे सुनाए, खाली नाम नहीं लिया था श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाश आनंद सरस्वती, उनका नाम लिए बिना उनका जो कंटेंट है उनको सुनाए, जैसे सुनाए वो अचंभित हो गए, बोले कि ये सब चीजें कहाँ से प्राप्त कर रहे हो, इसका पीछे प्लान क्या है तुम्हारा, वेयर इज इट ऑल दिस थिंग कमिंग फ्रॉम। ये जो जिस प्रकार ये टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है, खास करके इन पांच डिस्कशंस के द्वारा रिवील हो रहा है, ये कहीं और सिस्टमैटिकली इस प्रकार कहीं और इतिहास में प्रेजेंट नहीं किया गया है। नोवेयर, जब भगवान ने वेदों को रचना किया है व्यासदेव के रूप में, उतना सिस्टमैटिकली कहीं है, इधर एक मिलेगा उधर एक मिलेगा, कोई स्पष्ट होता ही नहीं है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुंदर और स्पष्ट तरीके से हमारे सामने सारे वैदिक साहित्यों को खुला करके रखा है, हमको केवल बस बुक खोल के पढ़ना है, उतना ही करना है। जैसे केले का जो छिलका निकाल के बस आपके मुंह के सामने रखा है, आपको बस मुंह खोल के खाना है, उतना ही बाकी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद ने इतना सरल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो हमको क्या करना है, केवल बुक खोल के हमको पढ़ना है और कुछ नहीं। इतना सरल रूप में इतना जो हजारों लाखों सालों का तपस्या के बाद, बहुत सारा अध्ययन के बाद, और लाइब्रेरी में जाके और रेफरेंस करके इसका खटाने के बाद भी जो हमको प्राप्त नहीं होता है, हमको बहुत सरल रूप में ये वैदिक ज्ञान को प्राप्त होता है। अगर उनमें से केवल आप 10% भी सीख लोगे इन संवाद में और याद कर लोगे और लोगों को बताओगे, मैं बता रहा हूँ बड़ा बड़ा जो PhD वाला पंडित भी वो सोचता है कि आप जो है महान पंडित हो। वैसा तो हमको इसे लेना देना नहीं, हमको पंडित नहीं बनना, हमको भक्त बनना है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने ऐसा प्रस्तुत करते हैं, ये तो इतना सारा जानता है। लेकिन हमने क्या किया, केवल प्रभुपाद जी का टीचिंग स्लॉट चैतन्य पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा है। वी जस्ट रेड दैट, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। इसलिए सारे भक्तों से निवेदन है कि इन सब बातों को वेदांत सुन के, संबंध विदे ये सब सुन के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको केवल खोल के उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ते पढ़ते रहेंगे अभ्यास हो जाएगा। तो अभी इधर हम समाप्त करेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट हम लेके क्या करेंगे, तो हमने आपके क्वेश्चन पेपर दिया है, तो एक क्वेश्चन का हम आंसर्स बता देंगे आपको, तो इसके ऊपर आपको संडे को क्वेश्चन पेपर आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, और 20 में से सबको 20 के 20 मिल जाना चाहिए, अगर एक को भी 19 मिल गया इसका मतलब है मैं फेल हो गया। तो कोई एक क्वेश्चन पेपर दो, उसका आंसर से बता देता हूँ। हमने केवल ये जो क्वेश्चन पेपर है सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी संवाद तक की दिया है, ये प्रकाश आंसर सार भट्टाचार्य और रामानंद राय के क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये टेबल में से भी क्वेश्चंस आएगा, आपने बनाया है, आपको मालूम है ये पांच संवाद हैं पांच लोगों के प्रति, कम से कम वो नाम याद रखना चाहिए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रामानंद राय, स्वामी भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, हाँ, ये पांच संवादों में कहाँ कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ है, दशाश्वमेध घाट प्रयाग में हुआ है, गोदावरी तट पे कोबूर में, और रामानंद राय संवाद और जगन्नाथपुरी में स्वामी भट्टाचार्य के साथ हुआ है, और प्रकाशानंद सरस्वती जो है वाराणसी में हुआ है। और ये संबंध ज्ञान जो है सनातन गोस्वामी संवाद से प्राप्त होता है, अभिधेय ज्ञान जो है रूप गोस्वामी संवाद से प्राप्त होता है, प्रयोजन ज्ञान जो है वो है वो रामानंद राय के संवाद से प्राप्त होता है, और संबंध अभिधेय प्रयोजन के देव को भी वर्णन किया, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, और आचार्यों का भी नाम दिया गया है और मंत्र को भी दिया गया है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो ये तीनों मंत्रों को भी याद कर सकते हैं, अभी और एक दिन समय है ना, हो जाएगा। हाँ, और संबंध विचार अभिधेय विचार इन दोनों से प्राप्त होता है, सिंपल टेबल है। हाँ, तो इस पे से भी प्रश्न आएंगे आपके, ये 30 प्रश्न और दिए गए लेकिन साथ साथ में इस पे भी आ गए। जैसे संबंध ज्ञान किसके चर्चा के द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न आएगा। हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी तीन चीजें बताए, क्या क्या हो? हाँ, भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व और रस तत्व। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु इन तीन तत्वों को किसके ऊपर आधारित किया है? हाँ, भागवत सिद्धांत के ऊपर आधारित किया, वेरी गुड। रूप गोस्वामी पाद पीठोपवीतन से जब उन्होंने कौन सा मंत्र को उच्चारण किया? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषय नमः। हाँ, तो नोट कर लीजिएगा, रूप गोस्वामी पाद, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु इम्पोर्ट रूप गोस्वामी। हाँ, कैसे उन्होंने किस शक्ति को प्रदान किया रूप गोस्वामी पाद को? श्री उनका शिक्षा को समझने का शक्ति है, टू अंडरस्टैंड। हाउ डज वन गेट द भक्तिलता बीज? भक्तिलता बीज को कैसे प्राप्त करेंगे? गुरु और कृष्ण के प्रसाद के, जैसे वो श्लोक है ना, ब्रह्मांड प्रमिते बाय कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद बाय भक्तिलता बीज, वो श्लोक को भी लिखना है हमको। वॉट इज द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग भक्तिलता बीज? श्रवण और कीर्तन के द्वारा भक्तिलता बीज को उगाया जा सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। वॉट इज द मैड एलिफेंट ऑफेंस? वैष्णव अपराध। नेम द सिक्स अनर्थस। निषिद्धाचार, कूटनाति, जीव हिंसा, बाद में पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। वॉट एंड वेयर डज भक्ति लता बीज फ्रुक्टिफाई? कहाँ और क्या चीज भक्ति लता बीज का फल है? कृष्ण प्रेम। वो कहाँ उगता है, कहाँ फलीभूत होता है? कृष्ण के चरण कमलों में होता है, आध्यात्मिक जगत में। वो ब्रह्मांड को छेद करते हुए, वैकुंठ को पार करते हुए, गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल के पास भक्ति लता बीज का फल उदय होता है। और भक्ति के, शुद्ध भक्ति के परिभाषा जो है अन्य अभिलाषा शून्यम, उसके अनुसार पांच उनके लक्षण क्या है शुद्ध भक्ति के? एक है अन्य अभिलाषा शून्यम, दूसरा है ज्ञान कर्माद्यनावृतम, तीसरा है कृष्ण अनुकूल है ना, तीसरा, चौथा क्या है कृष्ण, और पांचवा क्या है अनुशीलनम। हाँ, ये शब्द आप लिख लीजिए तो मालूम पड़ेगा रहेगा। नेम थ्री लेवल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, क्या क्या है वो भक्ति के तीन स्तर क्या है? साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। व्हाट आर द फाइव प्राइमरी रसस, क्या क्या है वो? सात सेकेंडरी रसस क्या है? उसके अंदर पेपर में दिया है ना, हास्य, अद्भुत, विभत्सा, वो सब दिया है। वो आप इंग्लिश में और हिंदी में, या आपको हिंदी में करना है तो वो टीचिंग से लॉर्ड चैतन्य भक्ति रसामृत में सब मिल जाएगा आपको। श्री चैतन्य एम्पावर्ड सनातन गोस्वामी विद, चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को कौन सा शक्ति प्रदान किया? प्रश्न पूछने का शक्ति प्रदान किया, रूप गोस्वामी पाद को समझने का शक्ति प्रदान किया, रामानंद राय को बोलने का, कृष्ण कथा वर्णन करने का शक्ति प्रदान किया। हाउ डिड श्री चैतन्य आंसर सनातन गोस्वामी क्वेश्चन, हु एम आई? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य, उस बंगाली में लिखना है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। Explain the condition of the conditioned soul, condition of the conditioned soul. यानी बद्ध जीव का अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक उदाहरण के द्वारा एक्सप्लेन किया. कौन सा क्या उदाहरण है? हाँ, वो राजा जो है एक चोर को दंड देता है. कैसे दंड देता है? कहीं पानी में डुबा देता है और एकदम तड़पता रहता है, एकदम तुरंत. ये उदाहरण है, ऐसा ही हमारा है. व्हाट आर द थ्री एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड? क्या है भगवान की तीन शक्तियां? क्या है? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति. राइट द स्टोरी ऑफ सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजर. वो तो स्टोरी अंदर लिखा है. उत्तर की ओर खोदेगा, दक्षिण की ओर खोदेगा, है ना वो स्टोरी. तो पूर्व के ऊपर खोदेंगे तो क्या बोला? शुद्ध भक्ति प्राप्त हुआ, तब उनको वास्तविक ट्रेजर मिल गया. सारे वेदों का लक्ष्य क्या है? कृष्ण को जानना. नेम द थ्री कैटेगरीज ऑफ फॉर्म्स ऑफ कृष्ण. कृष्ण के जो रूप का तीन विभाग क्या है? स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप. ओके, ठीक है. नेम द सिक्स कैटेगरीज ऑफ अवतार्स एंड देयर पर्पस. ये तो डेफिनेट क्वेश्चन है. सिक्स कैटेगरीज क्या है अवतार के? पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, युगावतार और शक्तावेश अवतार. उन सबके पर्पस क्या है? लीला अवतार का पर्पस क्या है? लोगों को आकर्षित करना. मनवंतर अवतार का पर्पस क्या है? मनु को सहायता करना. पुरुषावतार का सृष्टि करना. युगावतार का युद्ध को प्रचार करना. और गुणावतार का गुणों को नियंत्रण करना. आवेश अवतार का एक विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए एक विशेष शक्ति को प्रदान किया जाता है. हो गया. राइट अबाउट द वैदिक टाइम साइंस. हाँ, वैदिक टाइम साइंस चार युग का लिखना है. हाँ, कलयुग कितने का है? 4,32,000. द्वापर युग 8,64,000. त्रेता युग 12,96,000. और द्वापर सत्ययुग 17,28,000 वर्ष. तो ये एक चक्र को क्या बोला जाता है? दिव्य युग. ऐसे हजार चक्र होता है तो एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन. उसके अंदर कितने मनु हैं? 14 मनु है. हु इज द प्रेजेंट मनु एंड द मनवंतर अवतार. अभी के मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु. उस समय के मनवंतर अवतार का नाम क्या है? वामना. वेरी गुड. नेम द थ्री गुणावतार. तीन गुणावतार को नाम बताए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश. गिव फोर एग्जाम्पल्स ऑफ शक्तावेश अवतार. नारद मुनि भक्ति शक्ति और ज्ञान शक्ति, चार कुमार और व्यास देव साहित्य शक्ति और भूधारण शक्ति. अनंत देव को भूधारण शक्ति, कोई भी चार बता सकते हैं. मैंने तो 7-8 बता दिया था पहले कल. और नेम द फोर युगास एंड युग धर्मस एंड द कलर ऑफ द युगावतार इन द पर्टिकुलर युगा. चार युग कौन है? सत्य, त्रेता, द्वापर, कली. सत्ययुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चना पूजा, कलयुग में हरिनाम संकीर्तन. और सत्ययुग में सफेद रंग, त्रेता युग में लाल रंग और द्वापर युग में काला रंग और कलयुग में येलो. वेरी गुड. व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू रूप गोस्वामी श्री चैतन्य? क्या आदेश दिया श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी बात को? आप वृंदावन में जाके भगवान का लीला स्थली को आप और बाद में मैंने जो शिक्षा दिया उन शिक्षाओं को आधारित अपने एक ग्रंथ लिखो. तो रूप गोस्वामी पाद ने कौन सा ग्रंथ लिखा? भक्ति रसामृत. व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य? और वैष्णव एटिकेट्स के ऊपर आप एक विस्तृत रूप में आप एक ग्रंथ लिखो. तो सनातन गोस्वामी पाद ने कौन सा ग्रंथ लिखा? हरि भक्ति विलास. और दूसरा सेवा क्या था सनातन गोस्वामी पाद का? तो वैष्णव को जब नाम में आएंगे तो उनका व्यवस्था दान कर 100 मार्क्स. जिनको अगर हिंदी में करना होता है तो आप जिनको अंग्रेजी आता है तो उनके संपर्क में आप बैठ के थोड़ा सा सब लिख लीजिएगा. तभी उसका कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग तो हम बात हिंदी नहीं होता है तो इसके निकालना तो सगरा मुश्किल है. ठीक है. हरे कृष्णा.